आगे बहुत खूबसूरत आयते हैं जिसके ऊपर एक साल पूरा थीम दिया था पाकिस्तान के ट्रिप का, और वो क्या है, रुकू नंबर 5, 41 से 53, नेक लोगों का जन्नत में दाखला, जहर अल फसाद फिल बर्री वल बहरी बिमा कसबत अईदिन नास, खुशकी और तरी में लोगों की बदामालियों के बायस फसाद फैल गया, ये है लाहुल हदीस। ताल्लुक टूटे हुए, अल्लाह से ताल्लुक टूट गया, बंदों से टूट गया, रिश्तों में कमजोरियां, माँ बाप से ताल्लुक आज की औलादों के टूट गए, शौहर बीवियां, बीवियां शौहर, मोहब्बत तो करते हैं मगर दूसरे की बीवी और दूसरे के शौहर से, और अपने शौहर और बीवी के साथ न रहमत है न मवद्दत है, ये फसाद नहीं तो और क्या है। औरत मर्द है, मर्द औरत है, सेम जेंडर की शादियां फसाद है, होमोसेक्सुअलिटी फसाद है। एक एक मामले को खोलकर देखे तो इस वक्त पूरी दुनिया पोल्यूशन से भरी पड़ी है। क्यों हुआ? इसलिए कि इनके पास करतूतों का फल अल्लाह तला चखा दे, बहुत मुमकिन है कि वो बाज आ जाए। देखिए उम्मीद है अल्लाह को आपसे और मुझसे भी कि इंशाल्लाह तुम्हारी कोशिशों से दुनिया में कुछ ना कुछ बेहतरी तो आएगी। स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ, अपने घर से शुरू करो, जमीन में चल फिर कर देखो तो सही अगलों का अंजाम क्या हुआ, जिनमें से अक्सर लोग मुशरिक थे। बस आप अपना रुख इस सच्चे और सीधे दीन की तरफ ही रखिए, यानी डोंट लुक एट द सोसाइटी, पीयर प्रेशर में ना आए, जो अल्लाह कहता है वो करते जाओ, बाकी काम अल्लाह आसान कर देगा। कबल इसके कि वो दिन आ जाए जिसका टल जाना अल्लाह ताला की तरफ से है ही नहीं, उस दिन सब मुतफरिक हो जाएंगे, यानी उस दिन कोई तुम्हें अपनी ओट में नहीं छुपाएगा, बिल्कुल बरहना तुम खड़े होगे कियामत के मैदान में। कुफर करने वालों पर इनके कुफर का बवाल होगा और नेक काम करने वाले अपनी ही आरामगाह सवार रहे हैं। हाईलाइट करें, आज यहाँ आकर बैठे अल्लाह के कलाम को सुनने और सुनाने के लिए, असल में आप अपना बेडरूम सजा रहे हैं जन्नत का, अपनी कब्र के अंदर आप नेमते बुला रहे हैं। जन्नत एक टुकड़ा है, जहन्नुम भी एक टुकड़ा है जमीन का, आपके मेरे आमाल उसको या सजा रहे हैं या उसको बिगाड़ रहे हैं। क्यों? इस सारी बातों से क्या मिलेगा? ताकि अल्लाह तआला इन्हें अपने फजल से जजा दे, और जो लोग ईमान लाए और नेक आमाल किए वो कुफार को दोस्त नहीं रखता। फेथ इन एक्शन, अल्लाह को दोस्त बनाइए अल्लाह के दुश्मनों को नहीं। इसकी निशानियों में से खुशखबरी देने वाली हवाओं को भी चला देना है, इसलिए कि तुम्हें अपनी रहमत से लुत्फानंदोज करे, और इसलिए कि इसके हुक्म से कश्तियां चलें, और इसलिए कि इसके फजल को तुम ढूंढो, और इसलिए कि तुम शुक्रगुजारी करो। अल्लाह हमें शुक्रगुजार बना दे। और हमने आपसे पहले भी अपने रसूलों को इनकी कौम की तरफ भेजा, वो इनके पास दलीलें लाए, फिर हमने गुनाहगारों से इंतकाम लिया, हम पर मोमिनों की मदद करना लाजिम है। हाईलाइट कर लीजिए, नसरु मिन अल्लाह व फतहुन करीब। अल्लाह कहते हैं मुझे को मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन मैंने खुद को मजबूर कर लिया है किस पे, कि मैं मोमिनों की मदद करूंगा। और अल्लाह गज़ा और इसके इर्द गिर्द दुनिया में जहां भी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त जुल्म की चक्की में पिस रही है, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। और अल्लाह हम जैसे लोगों को जो भी इन आजमाइशों में नहीं पड़े हुए, इस दुनिया के जिहाद में सुरखरू कर दे, और हम अपनी जिंदगी को लाहुल हयात बनाने की बजाय बामकसद तरीके से गुजारने वाले बने। अल्लाह तला हवाएं चलाता है, वो अबर को उठाती हैं, फिर अल्लाह अपनी मर्जी के मुताबिक इसे आसमान में फैला देता है और इसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, फिर आप देखते हैं कि इसके अंदर से कतरे निकलते हैं बारिश के, और जिन्हें अल्लाह तला चाहते हैं अपने बंदों पर वो पानी बरसाता है तो वो खुश खुश हो जाते हैं। ऐसी खूबसूरत मिसालें हैं कि दिल करे हर एक पे बात की जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मानी बड़ा सिंपल है जो आप खुद भी इंजॉय करें। कायनात में फैली हुई निशानियां रब का तारुफ है, यकीन मानना कि बारिश इन पर बरसने से पहले पहले तो वो नाउम्मीद हो रहे थे, तो डोंट लूज होप, अगर आज खुश्की है तो कल बारिश भी होगी। बस आप रहमत इलाही के आसार देखें कि जमीन की मौत के बाद किस तरह अल्लाह इसे जिंदा कर देता है। अल्लाह जो मत मुस्लिमा के दिलों को भी जिंदा कर दे, क्योंकि दिल मुर्दा दिल नहीं इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्दे कोहन का चारा। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को बशारतें दे रहा है सूरत के अंदर, और कुछ शक नहीं कि वही मुर्दों को जिंदा करने वाला है और वो हर हर चीज पर कादिर है। अगर हम बादे तुम चलाएं यानी तेज हवाएं चला दें, और ये लोग इन्हीं खेतियों को मुरझाई हुई जर्द पड़ी हुई देख लें, तो फिर इसके बाद ना शुक्री करने लग जाएं। यानी कुछ लोग नेमतों में अल्लाह के करीब आते हैं और कुछ आजमाइशों में दूर भी चले जाते हैं, ये इसकी मिसाल दिखाई गई है कि किस तरह कुछ लोग डिप्रेशन और परेशानियों में चले जाते हैं। कभी जिंदगी में आपको कोई चीज डाउन करे तो ये आयत सोच लीजिएगा, आप देखिए कि बच्चों का, बड़ों का, शोहर का, बीवी का, हमें तो ये गम है ना, इनमें कोई भी गम आए ना तो फौरन देखे नहीं, मैंने डिप्रेशन में नहीं जाना, मैंने एंजाइटी में नहीं जाना, आप और कुरान में पढ़ रहे हैं ना तो मायूस क्यों हो रहे हैं? कोई बात नहीं है, हमारे बच्चे ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, हमारी बेटियों की इज्जतें महफूज रहेंगी, हमारे मर्द भी ठीक होंगे, हमारी रोजी रोटी ठीक होगी। 20 मसले सोच लीजिए जो आपके दिल को खपाते हैं, यहाँ बैठ कर के अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूँ, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह अला नेमत अल इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह अला नेमत अल ईमान, अला नेमत अल कुरान, अला नेमत अल हिदाया, मुसलमान तो है ना। तो मोमिन कभी भी मायूस नहीं होता, बेशक आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, ना बहरों को अपनी आवाज सुना सकते हैं जबकि वो पीठ फेर कर मुड़ गए हों, और ना पंडों को इनकी गुमराही से हिदायत करने वाले हैं, आप तो सिर्फ इन्हीं लोगों को सुनाते हैं जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, बस वही इताअत करने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में डाल दे। 3 आयात ईमान से मुतल्लिक, 45 रोम, लियज़ियल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति मिन फ़ज़लिही इन्नहु ला युहिब्बुल काफिरीन। नेकियां करने के बाद भी अगर जन्नत मिल गई तो ये हमारी नेकियों का नहीं, अल्लाह के फजल का करम है। बाय डिफॉल्ट हमारी कोई नेकी इस काबिल नहीं है कि अल्लाह जन्नत दे, अल्लाह अपनी रजा से, खुशी से कुछ चेंज डाल के उसको बढ़ा दे तो जन्नत मिलेगी। फिर 47 रोम, अल्लाह की मदद मोमिनों को मिलती है, वकाना हक्कन अलैना नसरुल मोमिनीन। तो फिर आपको अल्लाह की मदद बुलानी है तो क्या करें, ईमान को बढ़ाएं, ईमान की ताकत इस आयत के साथ नोट कर लीजिए। फिर 53 रोम, आंखें अंधी नहीं होती, दिल अंधे होते हैं, अल्लाह में आंखों और दिल के अंधेपन से बचा ले। अब इस रुकू में आयत 41 में जहर अल फसाद उफिल बर्री वल बहर की बात हुई। याद रखिए दुनिया में दो किस्म के फसाद हैं, एक मादी फसाद यानी जिसको आप देखें कि गंदगी पड़ी हुई है, आप जाएं घर में खूब कचरा फैला हुआ है, ये जाहरी फसाद है। मादी फसाद यानी फिजाई आलूदगी है, पोल्यूशन है, हमारे मुल्कों में कचरे के ढेर हैं, मच्छर हैं, मक्खियां हैं। लेकिन एक मानवी गंदगी भी होती है, और वो क्या है, अखलाकी फसाद, रिश्तों का बिगाड़, शोहर बीवी के रिश्ते में खयानते, माँ बच्चों के बीच में क्या कुछ है। आज के पारे के साथ कहूंगी फिर कि अगर हिजरत को दिल नहीं चाह रहा और आप कहते इन मुल्कों में सफाई बहुत है, इन मुल्कों में ये बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा, तो जरा सा उस मानवी फसाद को देखिए कि जिसकी वजह से आज यहाँ 10 किस्म की गंदगियां, आपके बच्चों को वो पढ़ना पड़ता है जो आप गवारा ना करें अगर आप उनकी किताबों को देख लें, उनको वो देखना पड़ रहा है जो आप देखेंगे नहीं। ये जो एड्स है ये क्या है, ये दिमागी फसाद का नतीजा है, ये हम जिंस परस्ती एक फसाद है, औरत की औरत से शादी लीगल होना ये एक फसाद है, मर्द की मर्द से शादी फसाद है, क्या करें फिर हम कैसे पूरी दुनिया से जाके लड़े। मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, पाक कलमे के जरिए से दुनिया को फसाद से पाक कर दीजिए। उम्मते मुस्लिमा के हाथ में रेमेडी है, आपके मेरे हाथ में वो वेपन है कि जिसके जरिए से दुनिया से लाहुल हदीस और लाहुल हयात निकलेगी। करने के काम क्या है कि दुनिया में अल्लाह की पकड़ को गनीमत जानकर तौबा करनी है और अपने अमाल की दुरुस्तगी करनी है, दुनिया की तबाहियों पर गौर व फिक्र करके इबरत पकड़नी है। इंसान के नेक या बद अमाल इसके अपने ही लिए होते हैं, किसी को किसी के अमल का बदला नहीं मिलेगा, हर बंदा अपने अमाल के बस गिरवी रखा हुआ है। अल्लाह ताला हमें अपने अमाल की इस्लाह करने वाला बना दे। आगे जी रुकू नंबर 6, 54 से 60, रोजे कयामत मुजरिमों की हसरत। अल्लाहुल्लज़ी खलककुम मिन दाफिन थुम्मा जअला मिन बादी दाफिन कुव्वा। अल्लाह ताला वो है जिसने तुम्हें कमजोरी की हालत में पैदा किया, फिर इस कमजोरी के बाद तवानाई दी, फिर इस तवानाई के बाद कमजोरी और बुढ़ापा दिया, जो चाहता है पैदा करता है, वो सबसे पूरा वाकिफ और सब पर पूरा कादिर है। ये था व्हील ऑफ लाइफ आपका, मेरा बचपन में भी कमजोर थे, बीच की थोड़ी सी जवानी है जो चल रही है, आगे फिर कमजोरियां और बुढ़ापा, और उसके बाद तो वो है जिसके लिए अभी तक हम तैयार नहीं, और वो क्या है, और जिस दिन कयामत बर्पा हो जाएगी गुनाहगार लोग कस्में खाएंगे कि दुनिया में एक घड़ी के सिवा नहीं ठहरे, इसी तरह बहके हुए ही रहे, और जिन लोगों को इल्म और ईमान दिया गया वो जवाब देंगे कि तुम तो जैसा कि किताबुल्लाह में है जो हमें कयामत तक ठहरे रहे, आज का ये दिन कयामत का दिन है लेकिन तुम तो यकीन ही नहीं मानते थे। यू डोंट बिलीव, आप कहते हैं आई डोंट बिलीव, आई डोंट थिंक सो, क्यामत आएगी, हालांकि वो आएगी, और फिर क्या होगा, बस उस दिन जालिमों को इनका उजर बहाना कुछ काम ना आएगा, और ना इनसे तौबा और अमल तलब किया जाएगा, क्योंकि अमल की जगह तो ये दुनिया है। पेपर लेने के बाद तो कोई एग्जामिनर नहीं देता कि जाओ इसमें अब लिख के आ जाओ। बेशक हमने इस कुरान में लोगों के सामने कुल मिसालें बयान कर दी हैं, आप इनके पास कोई भी निशानी लाएं, ये काफिर तो यही कहेंगे कि तुम बेहुदा गो, बिल्कुल झूठे हो। नाउज़ुबिल्लाह। देखिए, नबियों के ऊपर झूठे होने का इल्जाम भी लगता था, अल्लाह तआला इन लोगों के दिलों पर जो समझ नहीं रखते यूं ही मोहर लगा देता। कल नबी को लोग झूठा कहते थे, आज दाइये दीन को झूठा कहते हैं। अल्लाह तआला हिदायत दे। बस आप सब्र करें, यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है। आपको वो लोग हल्का यानी बेसब्रा न करें जो यकीन नहीं रखते। सूरत देखिए किस आयत पे पूरी हो रही है। उम्मीदें, तबशीर, बुशरा, बशारतें। ईमान से मतलब एक आयत 56 रोम। कयामत के दिन सब झूठ खुल जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करो। 52 में ला तुस्मियुल मौता की बात हुई कि तुम मुर्दों को नहीं सुनवा सकते। मुर्दे दो किस्म के होते हैं, एक वो जो कब्रों में है और एक वो जिनके दिलों पर कुरान का पानी नहीं पड़ा। आज कोई कब्र के पास खड़ा घंटों चीखता रहे, कब्र वाला उसकी बात नहीं सुनेगा, और सुन भी लेगा अगर बिल फर्ज़े मुहाल तो जवाब नहीं देगा। इसी तरह आप कुरान की दावत देते देते थक जाएं, बुलाते बुलाते प्यार से खाने खिलाएं, घरों में दर्स रखें, फ्रेंड्स को बुलाएं, ये करें वो आना भी चाहें, हैं भी सारी बड़ी प्यारी, लेकिन रास्ते में दुनिया है लाहवल हदीस और लाहवल हयात। कितने प्यारे लोग हैं जो आ नहीं रहे। आप मत सोचिए कि आप ही बहुत प्यारे हैं, आप कुरान की दावत पे आ गए हैं। आपसे ज्यादा अच्छे लोग घरों में हैं अभी भी, क्योंकि अभी उनका वक्त नहीं आया। आएंगे इंशाल्लाह, उनको भी अल्लाह लेके आएगा। फिर आप देखिए कि बचपन और बुढ़ापे का तस्करा था इस रुकू में। अल्लाह कहता है खलकाकुम मिन दाफिन, बच्चे को कमजोरियों पे पैदा किया। ये जो दाफ है ना, ये बच्चे के चेहरे की वो मासूमियत है। आप देखिए बच्चे के फीचर्स जैसे भी हो, चपटी नाक हो, फीना हो, मोटी नाक हो, काला रंग हो, प्यारा लगता है। क्यों भला? क्योंकि बच्चे को प्यार चाहिए होता है। अल्लाह ने बच्चे के चेहरे पे मासूमियत का पर्दा क्यों डाला? ताकि लोगों को उस पर प्यार आए। चले बुढ़ापे को जहन में लाइए, वही बचपन की शक्ल जवानी के मुख्तलिफ अदवार से गुजर कर जब बुढ़ापे में आई तो झुरियां आ जाती हैं। क्यों? आज आपको जवाब मिल रहा है कि बुढ़ापे में झुरियां क्यों पड़ती हैं, ताकि उनके चेहरों को देखकर हमें उन पे तरस आए। बुढ़ापे में तरस की जरूरत है और बचपन में मासूमियत की जरूरत है। और आप देखिए कि उम्र के मुख्तलिफ मराहल में एक ही शक्ल में कितनी तब्दीली है। क्या ये अल्लाह के वजूद की निशानी नहीं है? कभी बच्चे को जहन में लाइए, छोटा सा बच्चा और उसके चेहरे पे झुर्रियां हो, कैसा लगेगा? और अक्सर लोग जिन्होंने अपनी जवानी की हिफाजत की होती है ना, उनके चेहरे पे झुर्रियां तो आ जाती हैं, लेकिन बच्चों वाली मासूमियत भी आ जाती है। हमारी नानियां, दादियां, और आप अपनी सासों को जहन में लाइए, क्या उनके चेहरे पे चमक थी, तिब्बत सुनो लगाती थी, और वो सुरमा और काजल, क्या हुसन था उनके चेहरों पे, वो दंदासा, दांतों को लाल कर लेना, वो धुलने जो वो बनती थी, वो आज थी फितरत का हुसन। अल्लाह ताला हमें क्यामत से पहले क्यामत के बाद के लिए तैयारी करने वाला बनाए, और राहे हक की दावत में आने वाली तकलीफों पर सब्र से काम लेना सिखा दे। यहाँ पे सूरत पूरी हुई। अच्छी थी ना सूरत? बहुत प्यारी सूरत थी। थोड़ा सा रब देखते हैं आप सूरत रोम और उससे अगली सूरत लुकमान का। आप देखिए कि सूरत रोम में पूरा, अगर मैं आपको वन लाइनर आंसर दूं ना कि पूरी सूरत में एक कॉमन वर्ड बताइए, तो तौहीद। निशानियां दिखाकर, ये दिखाकर अल्लाह एक है, अल्लाह क्या कुछ करता है। सूरत लुकमान में शिर्क अजीम की बात है, उसका ऑपोजिट रुख दिखेगा। फिर दूसरी बात है कि सूरत रूम का अहतमाम क्या हुआ, ला यूकिनून, वो यकीन नहीं रखते। और सूरत लुकमान के अभी आगाज में ही हम देख लेंगे हुम यूकिनून, वो यकीन रखने वाले। ये उलूमुल कुरान का एक पूरा टॉपिक है कि सूरत का शुरू और आखिर, पूरी 114 सूरतों का सेव्ड है। यहाँ तो मैं आपको सिर्फ एक चखाती हूँ उसमें से एक दो जुमला, हालांकि इसमें एक पूरा समंदर है इल्म का। अल्लाह हमारे वक्त में बरकत दे कि हम रमजान के बाद मजीद इल्म सीखें। आगे है सूरत लुकमान, 31 नंबर की सूरत, 34 आयात। एक इंसान के नाम पर जो नबी नहीं थे, ये भी एक बड़ी खूबसूरत बात है। सूरत मरियम एक औरत के नाम पे है जो नबीया नहीं थी, ये सूरत उसके पैरेलल आ गई। लुकमान का नाम जो नबी नहीं थे, लेकिन इन दोनों का तस्करा अच्छे लफ्जों में आया। तीसरी सूरत एक गैर नबी के नाम पे सूरत तब्बत है, जिसमें अबू लहब का तस्करा है, तो वहां सूरत लहब भी कहते हैं उसको। ये एक एनालॉजी बता दी आपको तीन सूरतों की, कि वो तीनों सूरतें किस तरीके से वहां आपके सामने मेरे सामने आती हैं। चंद चीजें जरा सूरत लुकमान के बारे में भी जान लेते हैं। इसका नजूल भी 5 नबवी में हुआ, और हम कुरान पाक के जिस दौर से अब इस वक्त गुजर रहे हैं ना, यहाँ जो सूरतों की तरतीब है ना, अमूमन यही जमाने नजूल की भी तरतीब है। जुल्म व सितम था, मुसलमानों को गजर मूली की तरह काटा जा रहा था। इस सूरत में हिकमत का लफ्ज, जज्बा शुक्र, तौहीद और शिर्क की बात है, और साबित किया गया कि तौहीद अदल है, यानी सिर्फ एक अल्लाह को मानना ही अदल का तकाजा है, दो भी होते तो बात नहीं बनती, और शिर्क को जुल्म अजीम कहा गया। चूंकि ये बीच का दौर था, किसी का बेटा मुसलमान हो रहा था, किसी की बेटी, किसी की बीवी, किसी का शौहर, तो इस सूरत में न्यू मुस्लिम यानी रिवर्ट्स को, नौ मुस्लिमों को हिदायत दी जा रही है कि देखो तुम्हारे माँ बाप मुशरिक हैं, तुमने उनकी इताअत तो नहीं करनी, यानी उनके कहने पे शिर्क तो नहीं करना, लेकिन उनके साथ हुस्ने सुलूक छोड़ना नहीं। और इसी तरह पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप वाली सूरत, बाप और बेटे के बीच का ताल्लुक, जैसे सूरत यूसुफ में आपको दिखा था ना, इस सूरत में एक गैर नबी यानी लुकमान की नसीहतों की सूरत में रुकू नंबर 2 पे होगा। आइए जरा इसका खुलासा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रुकू नंबर 1, 1 से 11 आयात हैं। लहवल हदीस, अलिफ लाम मीम, तिलका आयातुल किताबिल हकीम, हुदा व रहमतन लिल मुहसिनीन। सुभान अल्लाह, मुहसिनों की बातें हैं। ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं, जो नेकुकारों के लिए राहबर और सरासर रहमत है। जो लोग नमाज कायम करते हैं, नोट करिएगा मोहसिन कौन, नंबर 1 जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और आखिरत पर कामिल यकीन रखते हैं। तीन बड़े बड़े पिलर्स दे दिए इस्लाम के। यही लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं, और यही लोग निजात पाने वाले हैं। आपको लगा नहीं एकदम कि आपने सूरह बकरा शुरू कर दी? ये भी लिख लें, सूरत लुकमान और सूरह बकरा का स्टार्ट मिलता जुलता है। हाफिजों को बड़ी गलती लग जाती है इनमें। और बस लोग ऐसे भी हैं जो लख बातों को मोल लेते हैं, यानी पैसों से खरीद के लाते हैं लाहवल हदीस, के बेइल्मी के साथ लोगों को अल्लाह की राह से बहकाएं और इसे हंसी बनाएं। यही वो लोग हैं जिनके लिए रुस्वा करने वाला अजाब है। जब इनके सामने हमारी आयतें तिलावत की जाती हैं, तो तकबर करता हुआ इस तरफ मुंह फेर लेता है, गोया इसने सुना ही नहीं, यानी सुनी अनसुनी करता है। गोया कि इसके दोनों कानों में डॉट लगे हुए हैं, ढक्कन है इनके कानों पे, यानी कान बंद है इनके। आप इसे दर्दनाक अजाब की खबर सुना दीजिए। बेशक जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और नेक काम भी किए, इनके लिए नेमतों वाली जन्नतें हैं, जहाँ वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह का वादा सच्चा है, वो बहुत बड़ी इज्जत और गलबे वाला और कामिल हिकमत वाला है। इसने आसमानों को बगैर सुतून के पैदा किया है। तुम इन्हें देख रहे हो? क्या देख रहे हो? आसमान को देखते हैं, कभी कोई पिलर दिखा? इस रूम के अंदर दीवारें हैं? कोई बिल्डिंग दुनिया में ऐसी है जिसमें दीवारें ना हो? हो सकती है, लेकिन फिर उसमें पिलर्स होंगे, या कोई उसको ऐसे गोल तरीके से बनाया होगा कि उसकी रूफ पूरा उसका बोझ उठाए। और इसने जमीन में पहाड़ों को डाल दिया ताकि वो तुम्हें जुम्बिश ना दे, यानी तुम्हें देकर हिल ना जाए, और हर तरह के जानदार जमीन में फैला दिए। और हमने आसमान से पानी बरसाकर जमीन में हर किस्म के नफीस जोड़े उगा दिए। ये है अल्लाह की मखलूक। अब तुम मुझे इसके सिवा दूसरे किसी की कोई मखलूक तो दिखाओ, कुछ भी, बल्कि ये जालिम खुली गुमराही में है। कितना खूबसूरत अंदाज है बेबस करने वाला, कि अल्लाह ने तो इतनी प्यारी दुनिया बना दी, ये तुम्हारे लात मनात उजा यगूस नसर इन्होंने क्या बनाया। तो एक आयत है इसमें ईमान से मुतल्लिक, इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलु सालिहाती लहुम जन्नातुन नईम, नेक कामों के नेक नताइज, बुरे कामों के बुरे नताइज, जैसी करनी वैसी भरनी। ये है जी वो रुकू जिसके थीम पे आपका पारा है। पहली आयत पारे की जो गुजर गई, और अब ये मेन है आयत 6 में लफ्ज गुजर रहा है लहवल हदीस। लहवल हदीस वही है जिसको अब लव कहें। लहव और लव में बस हा और गैन का फर्क है। कलाम दिल फरेब भी इसको कहा, हर वो चीज जो बंदे को नंबर 1 अल्लाह से, दूर कर दे, और नंबर दो उसको मकसद हयात से दूर कर दे, उसको लाहुल हदीस कहते हैं। और हमारे सलफ सालेहीन, जिसमें ओल्डेस्ट लोग भी आते हैं, जिसमें आप नाम जानते हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद का नाम पुराने स्कॉलर्स में है, इब्ने अब्बास की तो अल्लाह के नबी ने गवाही दी थी कि उनसे कुरान की तफसीर लो, वो कहते हैं लाहुल हदीस से मुराद जहाँ गिना है। और गिना किसको कहते हैं? गाने को, बजाने को। और गिना जिना तक ले जाता है। ये आप जाकर हर फिल्म इंडस्ट्री के इर्द गिर्द रहने वालों को देख लीजिए। गाना दिल में निफाक पैदा करता है। हदीस में आता है कि गाने से दिल में निफाक ऐसे पलता है जैसे बारिश के बाद सब्जा उगता है। आप तारीख में झलक डालकर देखिए, अगर आपका दिल चाहे तो आप मुसलमानों के वो दौर जिसमें मुसलमान अरूज पे थे, हर दौर के संजीदा हुक्मरानों का तर्ज अमल क्या था कि उन्होंने अपने दौर में गाने बजाने पे पाबंदी लगा दी। मैं हजरत उमर और अबू बकर और खुलफा राशिदीन की बात नहीं कर रही, उसके बाद हत्ता के रोमन्स, क्रिश्चियंस, रोम में कैसा दौर आया कि हुक्मरान ने सब गाने बजाने वालों को वहां से ये कहकर निकाल दिया कि ये हमारी यूथ को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि जवानी में गाने सुनने को दिल करता है। लोग कहते हैं कोई बात नहीं, गाने से क्या होता है, हम खिदमत कर रहे हैं। और बदतरीन गाने वह जो दीन के नाम पे लोग म्यूजिक के साथ गाते हैं, नबी पे दुरूद और अल्लाह के नाम ऐसे ऐसे मेलोडियस तरीके से सुनाते हैं, कहते हैं नहीं इसे दिल में अच्छा लगता है। लेकिन नशीद आप सुन सकते हैं, बगैर म्यूजिक के गाना जिसमें हलाल लफ्ज है सुन सकते हैं, बीवी शोहर को देकर गाना गा सकती है, शर्त यह कि वो सुनने को तैयार हो, बेचारा अल्लाह का बंदा बीमार ही ना हो जाए। आप अपने शोहरों को गाने सुना सकती हैं, लेकिन ये नहीं कह सकती कि तुझे बनाया अल्लाह ने मेरे लिए, मैं आई दुनिया में तेरे लिए। और मियाँ साहब आपको ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे लिए मैं दूध की नहर खोद दूंगा, ये एग्जैजरेशन होगी, सूरह शुरा में हम पढ़ चुके। लिखिए एक जुमला, अगर गानों और कवालियों से इस्लाम फैल सकता तो अल्लाह ताला अंबिया कराम को यही तरीके सिखाता। मैं आप सबकी गवाही लेना चाहती हूँ, माशाल्लाह 20 पारे हो गए, नबियों का कितनी दफा किस्सा आया, बनी इसराइल तो पहले पारे से ही है, सूरत अल अराफ से बाज़ाब्ता तौर पे अंबिया के किस्से शुरू हुए, और अब 20वें पारे। आपको कहीं भी नबियों का मिजाज गाने बजाने का दिखा? राग रंग टप्पे नहीं, अल्लाह का कलाम सबसे बड़ा है, ये दिलों पे गाने से ज्यादा असर लाता है, बंदों का कलाम है गाना। आप दिलों से गाने की मोहब्बत निकालना चाहते हैं ना, तो अल्लाह का कलाम सुने, क्योंकि ये एक साइड वे ऐसे जैसे सी सॉ है ना, ऊपर नीचे, जितना आप कुरान सुनेंगे आपका गाना सुनने को दिल नहीं करेगा, म्यूजिक की मोहब्बत निकलती है और कुरान की तरफ आने से रोकता है आपको गाना। गाना अल्लाह के कलाम की अहमियत को कम कर देता है। एक आजमाइश के तौर पर रमजान के दिन है ना, इसमें छोड़ दे, अपने बच्चों से कहे एक हफ्ता गाने छोड़ो, म्यूजिक छोड़ो, और फिर जो आज का म्यूजिक है अल्लाह की बना, वो तो एग्रेशन पे लाता है, वो तो कहता है किल मी किल मी किल मी, लव योर सिस्टर लव योर सिस्टर, ये गाने आज के रेप फला फला फला, यानी जो गंदगी और बेहूदगी, और कई लोगों ने गानों को बैक ट्रैक करके उसके अंदर से आवाजें सुनी, मैं खुद इसकी गवाही दे सकती हूँ। आज से कोई 20-22 साल पीछे की कहानी है, हम पाकिस्तान में थे उस वक्त, तो कनाडा से एक ब्रदर आए थे कि जो पहले म्यूजिशियन थे, बाद में अल्लाह ने उनको हिदायत दी तो उन्होंने वो छोड़ दिया। अब वो राज और असरार और रमूज सारे जानते थे, उन्होंने हमें यानी वहां करके दिखाया कि जब हम अपनी वेव्स को, गानों की जो होती हैं उसको बैक ट्रैक करके सुनते हैं, जैसे इस वक्त देखे मेरी बात भी रिकॉर्ड हो रही है, बाद में इसको सेव कर दिया जाएगा। उन्होंने अपना वो ग्रामोफोन टाइप है उसको तो उन्होंने प्ले किया, वो जो एक बड़ी मशहूर पोएम है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और एक और भी है इसी तरह की ना, जब वो चलाई तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, फिर उन्होंने अपने उस ग्रामोफोन में से उसको बैक ट्रैक यानी पीछे से सुनाया, जैसे ऐसे कहे ए बी सी डी की बजाय जेड से आप शुरू करें, आप यकीन करें उसमें से जो आवाजें निकल रही थी ना, देर इज नो गॉड देर इज नो गॉड देर इज नो गॉड। फिर एक गाना उन्होंने हमें कोई ऐसा सुनाया जिसमें लिखा था किल मी किल मी किल मी किल मी, मुझे मारो मुझे मारो। आज आपके बच्चे जो सुनते हैं आपको तो अंदाजा भी नहीं है, आप जाके जरा चेक तो कीजिए, ये जो डिप्रेशन के मौजू हैं, जो सुसाइड बच्चे कर रहे हैं, जो उनको माँ बाप अच्छे नहीं लगते, इस्लाम अच्छा नहीं लगता, शैतान ने उनको गानों के रास्ते म्यूजिक के रास्ते पीछे से डसा है। तो बार अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सबके दिलों से इसको निकाल ले, और इस पे इंशाल्लाह इन पे आपको दुआ भी सिखाते हैं कि कैसे ये दिल से निकले। बस अल्लाह से ये दुआ करें कि अंतजल कुरान अलजीमा रबी अकल्बी, अल्लाह इस कुरान की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे, इसको मेरी ठंडक बना दे, फेथ इन एक्शन, कुरान से हिकमत और हिदायत समेटनी है, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है और एहसान मंद होना है, नमाज ज़कात की पाबंदी और आखिरत पर यकीन रखते हुए नेक आमाल करने हैं। और अगला रुकू है जी फादर चाइल्ड या बाप बेटे के बीच का ताल्लुक। अच्छा बाप अपने बच्चे को कैसी नसीहतें करता है? रुकू नंबर 2 आयत 12 से 19। हजरत लुकमान की हकीमाना नसीहतें, वलकद आतैना लुकमान अलहिकमता नशकुर लिल्लाह, और हमने यकीनन लुकमान को हिकमत दी थी कि तू अल्लाह का शुक्र कर। हर शुक्र करने वाला अपने ही नफे के लिए शुक्र करता है, और जो भी नाशुक्री करे वो जान ले कि अल्लाह ताला बेनियाज और तारीफों वाला है। अब इसमें साथ साथ ही देखेंगे ना, तो पहली बात लिख ले, माँ बाप में हिकमत होनी चाहिए। अल्लाह ने नसीहत से पहले लुकमान के साहिब हिकमत होने की बात की, और जबकि लुकमान ने आवाज कहते हुए अपने बेटे से फरमाया कि मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह के साथ शरीक ना करना, बेशक शिर्क बड़ा भारी जुल्म है। हमने इंसान को इसके माँ बाप के मुतल्लिक नसीहत की है। इसकी माँ ने दुख पर दुख उठाकर उसे हमल में रखा और इसकी दूध छुड़ाई 2 बरस में है कि तू मेरी और अपने माँ बाप की शुक्रगुजारी कर, तुम सबको मेरी ही तरफ लौट कर आना है। और अगर वो दोनों तुझ पर इस बात का दबाव डालें कि तू मेरे साथ शरीक करे जिसका तुझे इल्म ना हो, तो तू इनका कहना ना मानना। हाँ, दुनिया में इनके साथ अच्छी तरह बसर करना, ये है रिवॉर्ड लोगों को अपने पेरेंट्स के साथ ताल्लुक रखने की नसीहत। और इसकी राह पर चलना जो मेरी तरफ झुका हो, तुम्हारा सबका लौटना मेरी ही तरफ है। तुम जो कुछ करते हो इससे फिर मैं तुम्हें खबरदार कर दूंगा। प्यारे बेटे, अगर कोई चीज राई के दाने के बराबर भी हो, फिर भी वो ख्वाह किसी चट्टान में हो या आसमानों में हो या जमीन में हो, इसे अल्लाह ताला जरूर लाएगा। अल्लाह ताला बड़ा बारीक बीन और खबरदार है। देखिए, अल्लाह देख रहा है और वो कल बताएगा। ये कॉन्सेप्ट दें बच्चों को बजाय इसके ये कहने के कि लोग देखेंगे, लोग बुरा मानेंगे, लोग क्या कहेंगे। यानी अल्लाह कॉन्शियस कीजिए, पीपल कॉन्शियस ना कीजिए बच्चों को। ऐ मेरे प्यारे बेटे, तू नमाज कायम रखना, अच्छे कामों की नसीहत करते रहना, बुरे कामों से मना किया करना, और जो मुसीबत तुम पर आए सब्र करना। यकीन मान के ये बड़ी हिम्मत के कामों में से। बच्चे को कह रहे हैं अमर बिल मारूफ अनिल मुनकर करो, और हम बड़े हो गए, हमें अभी तक ये सबक नहीं आया। बच्चा अपने साथियों को छोटी छोटी बातों पे रोकेगा तो बड़े होके बड़ी बातों पे रोकेगा। लोगों के सामने अपने गाल ना फुला, एटीट्यूड प्रॉब्लम, और जमीन पर अकड़ कर ना चल। किसी तकबर करने वाले शेखी खोरे को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। और अपनी रफ्तार में मियाना रवि इख्तियार कर और अपनी आवाज पस्त कर। यकीनन आवाजों में सबसे बदतर आवाज गधों की आवाज है। क्या गधे की बेइज्जती हुई? नहीं, गधा गधा हो तो अच्छा है, लेकिन इंसान गधों की तरह ऊंची ऊंची बोले और उसकी आवाज में इतना जोश और थ्रिल हो तो इंसान अच्छा नहीं लगेगा। तो आप देखिए कि हमने आयत 12 से लेकर 19 में लुकमान की अपने बेटे को जो बेहतरीन नसीहतें देखी, शिर्क ना करना सबसे पहले, अल्लाह का हक दिया, वालदैन का एहसान मानना, अपनी बात खुद नहीं कही बल्कि थर्ड पर्सन के सीखे में बात हुई। इससे पता चलता है कि बच्चों को अपने हकूक ना ज्यादा बताया करें, मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी, मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, फिर आगे से वो बोल पड़ेंगे कि ना करते, ना पैदा करते, हमने क्या कहा था हमें करें। अगर वो शिर्क पर उकसाएं तो इतात ना करना, लेकिन अच्छा सलूक करना। नेकी करो चाहे कितनी छोटी ही क्यों ना हो, नमाज कायम करो, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करो, लोगों के सामने इतराओ मत, जमीन में गुरूर के साथ मत चलो, मियाना रो और नरम चाल चलो, अपनी आवाज धीमी रखो। तो ये सारा कुछ करने के बाद कैसा बच्चा आ रहा है, जब भी डालने को नहीं दिल करता। करेक्टर बिल्डिंग ऐसे करें, अपने बच्चों को आज जाकर इस परखें, इस पे पहले तो अपने आप को परखें कि हमने उनके साथ गैर हकीमाना बातें तो नहीं कर ली बचपन में कि उनको चिढ़ हो गई। आज लोग कहते हैं सबसे अच्छे हैं माँ बाप के सामने बुरे हैं। कोई माँ कहती है मुझसे चिढ़ा है बच्चे को, कोई बाप कहता है इसको मैं नहीं अच्छा लगता। आपने ओवरडोज दी है या रॉन्ग सुई का नंबर चूज किया है? कुछ ना कुछ आपने तरबियत में किया है जिसकी वजह से बच्चों में रिएक्शन हुआ, और बाहर की दुनिया भी बहुत है माँ बाप से आजाद करवाने वाली। फेथ इन एक्शन, वालदैन के साथ हुस्ने सलूक करना है, अल्लाह ताला की नाफरमानी में वालदैन की इताअत नहीं करनी, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना है, मुसीबत के वक्त सब्र और हिम्मत दिखानी है, गरूर और तकबर नहीं करना, बात करते हुए आवाज नीची रखनी है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। आखिरी रुकू है सूरत का, रुकू नंबर 3 20 से 30। अबाओ अजदाद की पैरवी करना सोच समझ कर। अलम तरव अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान की हर चीज को हमारे काम में लगा रखा है और तुम्हें अपनी जाहरी और बातनी नेमतें भरपूर दे रखी हैं। बस लोग अल्लाह के बारे में बगैर इल्म के और हिदायत के और बगैर रोशन किताब के झगड़ा करते हैं, और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह की उतारी हुई वही की ताबेदारी करो, तो कहते हैं हमने तो जिस तरीके पर अपने बाप दादाओं को पाया है इसी की ताबेदारी करेंगे, अगरचे शैतान इनके बड़ों को दोजख के अजाब की तरफ बुलाता हो। और जो शख्स अपने आप को अल्लाह के ताबे कर दे, सरेंडर हो जाए, सबमिशन हो जाए उसके अंदर, और हो भी नेकुकार, यकीनन इसने मजबूत कड़ा थाम लिया, तमाम कामों का इंजाम अल्लाह की तरफ है, अल्लाह हमें ऐसा बना दे। कुफर के कुफर से आप रंजीदा ना हो, आखिर इन सब का लौटना तो हमारी जानिब ही है, फिर हम इनको बताएंगे जो उन्होंने किया, बेशक अल्लाह सीनों के भेद तक से वाकिफ है। हम इन्हें गो कोई यूं ही सा फायदा दे दें, लेकिन बिलाखर इन्हें नहायत बेचारगी की हालत में सख्त अजाब की तरफ हका ले जाएंगे। यह है लाहवल हयात, बेकार जिंदगी आज। अल्लाह कहते हैं मौजें कर लो, मस्तियां कर लो, जब मेरे सामने आओगे तो लग पता जाएगा। अगर आप इनसे दरियाफ्त करें कि आसमान और जमीन का खालिक कौन है, तो जरूर जवाब देंगे कि अल्लाह। यह है रबूबियत का इकरार, फितरत में गुंदी हुई पुकार का जवाब। तो कह दीजिए कि सब तारीफों के लायक अल्लाह ही है, लेकिन इनमें से अक्सर बेइल्म है। आसमानों में और जमीन में जो कुछ है वो सब अल्लाह ही का है, यकीनन अल्लाह तआला बहुत बड़ा, बेनियाज और तारीफ के लायक है। अब ये आयतें सुनते वक्त जरा अल्लाह की बड़ाई को महसूस कीजिए, रुए जमीन के तमाम दरख्तों के अगर कलमे हो जाएं, और तमाम समंदरों की स्याही हो, और इनके बाद 7 समंदर और भी हों, ताहम अल्लाह के कलेमात खत्म नहीं हो सकते, बेशक अल्लाह तआला गालिब और बाहिकमत है। तुम सब की पैदाइश और मरने के बाद जिंदा करना ऐसा ही है जैसे एक का जी उठता है, यानी एक को करना या करोड़ों को करना एक बराबर, बेशक अल्लाह तआला सुनने वाला और देखने वाला है। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह तआला रात को दिन में और दिन को रात में खपा देता है? सूरज चांद को इसी ने फरमा बरदार कर रखा है, और हर एक मुकर्रर वक्त तक चलता रहे। अल्लाह तआला हर उस चीज से जो तुम करते हो खबरदार है। इस सब इंतजामात इस वजह से हैं कि अल्लाह तआला हक है, और इसके सिवा जिन जिन को लोग पुकारते हैं सब बातिल है, और यकीनन अल्लाह तआला बहुत बुलंदियों वाला और बड़ी शान वाला है। अल्लाह अकबर, कोई चीज नहीं छोड़ी अल्लाह ने। फेथ इन एक्शन, दावते हक देते हुए हिकमत से बात करनी है, अबा उस्ताद की अंधी तकलीद नहीं करनी। अब है आखिरी रुकू, रुकू नंबर 4, 31 से 34। कयामत के दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। सोचिए इसको और अपने प्यारों को जहन में लाइए। अलम तरा नल फुल कतजरी फिल बहरी बिने मत इल्ला, क्या तुम इस पर गौर नहीं करते कि दरिया में कश्तियां अल्लाह के फजल से चल रही हैं, इसलिए कि वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाए। यकीनन इसमें हर एक सबर और शुक्र करने वाले के लिए बहुत सी निशानियां हैं, और जब इन पर मौजें साहिबानों की तरह छा जाती हैं, यानी समुद्री तूफान आता है, टाइटैनिक को जहन में ले आए, तो नहायत खुलूस के साथ एतकाद करके अल्लाह ही को पुकारते हैं। फिर जब वो अल्लाह बारी ताला इन्हें निजात देकर खुशकी की तरफ पहुंचाता है, तो कुछ इनमें से इतदाल पर रहते हैं, और हमारी आयतों का इनकार सिर्फ वही करते हैं जो बद अहद और नाशुकरे हों। लोगों, अपने रब से डरो और इस दिन का खौफ करो जिस दिन बाप अपने बेटे को कोई नफा ना पहुंचा सकेगा। इमेजिन कीजिए बाप बेटे के रिश्ते को, और ना बेटा अपने बाप का जरा सा भी नफा करने वाला होगा। याद रखो अल्लाह का वादा सच्चा है, देखो तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में ना डाले, और ना धोखेबाज शैतान तुम्हें धोखे में डाल दे। अलगुरूर उसका नाम है, बड़ा धोखेबाज। बेशक अल्लाह तआला ही के पास कयामत का इल्म है, वही बारिश नाजिल फरमाता है, और माँ के पेट में जो है इसे जानता है, कोई भी नहीं जानता कि कल क्या कुछ करेगा। आपको मुझे नहीं पता कल का सूरज क्या लेकर आता है, और ना किसी को ये मालूम है कि किस जमीन में मरेगा। पता है आपको मुझे, हम कहाँ मरेंगे, सफर में के हजर में, गर्मी में के सर्दी में, अपने मुल्क में के गैर मुल्क में। याद रखो अल्लाह ताला पूरे इल्म वाला और सही खबरों वाला है। तो अल्लाह ताला हमें ईमान की मौत दे, जहां भी दे जब भी दे। फेथ इन एक्शन, अपने अमाल की फिक्र खुद करनी है, दुनिया की जिंदगी में आखिरत को नहीं भूलना। अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र करते हुए अल्लाह का शुक्र करना है। खूबसूरत सूरत है, आप देखें तो इसमें बहुत सारे पेरेंटिंग के नुक्ते हैं। जितने भी बच्चों की तरबियत पे मोस्टली लेक्चर्स कोई भी स्पीकर देता है वो इन्हीं आयतों को यूज़ करता है। अल्लाह आपके बच्चों को भी आपकी आंखों की ठंडक बनाए।